लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle ultime tre catechesi abbiamo parlato dell'opera santificatrice dello Spirito Santo che si attua nei sacramenti, nella preghiera e seguendo l'esempio della Madre di Dio.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। पिछले तीन धर्म शिक्षा मालाओं में हमने पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण के कार्य की चर्चा की, जिसे वे संस्कारों, प्रार्थना और ईश माता के अनुसरण में करते हैं। लेकिन हम द्वितीय वैटिकन महासभा की प्रसिद्ध बातों को सुने, पवित्र आत्मा ईश प्रजा का पवित्रीकरण और गुणों में समृद्धि संस्कारों और कलिसियाई प्रेरिताई के माध्यम से केवल नहीं बल्कि हर एक को अपनी इच्छा के अनुरूप दिए जाने वाले उपहारों के माध्यम से भी करते हैं। संत पापा ने कहा कि पवित्र आत्मा ने हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप में अपने वरदानों से विभूषित किया है, अतः हम कलिसिया में पवित्र आत्मा के एक दूसरे कार्य करने के तरीके का जिक्र करेंगे जो हमारे लिए उनका करिश्माई कार्य है। उन्होंने कहा कि इसे शब्दों में व्याख्या करना कठिन है, फिर भी इस करिश्माई कार्य को दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। पहला करिश्मा जो हमारे लिए एक उपहार है जिसके द्वारा जन सामान्य की भलाई होती है, सबों के हित में उपयोगी। दूसरे शब्दों में यह मुख्यतः और सामान्यतः व्यक्ति के पवित्रीकरण पर आधारित नहीं है, लेकिन इसके द्वारा समुदाय की सेवा होती है। दूसरा करिश्मा एक उपहार है जो किसी एक के लिए विशेष रूप में दिया गया है, सबों के लिए एक ही समान नहीं है, और यही तथ्य इसे कृपा से पवित्रीकरण, ईश शास्त्रीय गुणों और संस्कारों से अलग स्थापित करता है जो सबों के लिए सामान्य और बराबर है। करिश्मा किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय के लिए होता है। यह एक उपहार है जो ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। द्वितीय वैटिकन धर्म सभा भी इसकी व्याख्या करती है, पवित्र आत्मा अपने विशेष कृपाओं को विश्वासियों के लिए प्रदान करते हैं। अपने इन उपहारों के द्वारा वे उन्हें अपने विशेष कार्य हेतु योग्य बनाते और तैयार करते हैं जो कलिसिया की नवीनता और उसके निर्माण हेतु अग्रसर करता है। प्रेरित संत पौलुस के शब्दों में वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
I carismi sono monili o gli ornamenti che lo Spirito Santo distribuisce per rendere bella la sposa di Cristo.
करिश्मे गहनों या आभूषणों की भांति हैं जिसे पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्त की वधु को और अधिक सुंदर होने के लिए प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में कोई भी वैटिकन द्वितीय धर्म सभा की बातों को समझने के योग्य होता है। ये करिश्मे चाहे वे अपने में अद्वितीय हों या एकदम साधारण और विस्तृत कृतज्ञता और उचित मनोभावों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कलिसिया की जरूरतों की पूर्ति हेतु पूरी तरह से उपयुक्त और उपयोगी हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, जो कोई भी युग के इतिहास पर विचार करता है वह सच्चे नवनिकरण की प्रतिक्रिया को पहचान सकता है, जो अप्रत्याशित ढंग से जीवित आंदोलनों का रूप धारण किया और जिसने पवित्र कलीसिया की असीम जीवन शक्ति को लगभग मूर्त बना दिया, और यह लोगों के एक समूह का करिश्मा है, व्यक्ति विशेष का करिश्मा। संत पापा ने कहा कि हमें करिश्मों को पुनः खोजने की जरूरत है, क्योंकि यह हमें लोक धर्मियों के विकास को सुनिश्चितता प्रदान करती है, विशेषकर नारियों के संबंध में, जो केवल एक संस्थागत और सामाजिक शास्त्रीय तथ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें धर्म ग्रंथ और आध्यात्मिक आयाम के आधार पर भी समझा जाता है। लोक धर्मी अपने में आखिरी नहीं है, वे अपने में एक तरह से बाह्य सहयोगी नहीं, ना ही धर्म विधि में सहायक भीड़ ही हैं। उनके अपने करिश्मे और उपहार हैं, जो कलीसिया की प्रेरिताई में हाथ बटाते हैं। संत पापा ने आगे कहा कि हम एक और चीज को जोड़ें, जब हम करिश्मा की बात करते हैं तो हमें तुरंत इस नासमझी को अपने से दूर करने की जरूरत है कि हम शानदार या असाधारण उपहार और क्षमताओं के धारक हैं। इसके बदले हमारी सोच यह हो कि वे साधारण उपहार हैं, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा और जीवन के प्रेमपूर्ण स्थितियों में हमारे लिए असाधारण बन जाते हैं। संत पापा ने कहा कि हम में से हर कोई करिश्मा है।
Una tale interpretazione del carisma è importante perché molti cristiani sentendo parlare dei carismi sperimentano tristezza o delusione in quanto sono convinti di non possederne.
करिश्मों के संबंध में ऐसा भाव रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ख्रिस्तीय करिश्मों के बारे में जिक्र करने पर उदासी और निराशा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने में कुछ नहीं हैं, और इस तरह वे अपने को अलग करते या अपने को दोयाम दर्जे के ख्रिस्तीय सोचते हैं। संत अगुस्टिन अपने समय में इसके संबंध में एक अति सुंदर तुलना करते हुए अपने लोगों से कहते हैं, यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे पास मानो थोड़ा कुछ है, लेकिन यदि आप एकता से प्रेम करते हैं तो वह सब कुछ जो किसी के पास है आपके पास भी है।
Soltanto l'occhio nel corpo ha la facoltà di vedere, ma è forse soltanto per se stesso che l'occhio vede? No, l'occhio vede per la mano, per i piedi, per tutti i membri.
हमारे शरीर में केवल आंख देखता है, लेकिन क्या वह केवल अपने लिए ही देखता है? वह हाथ, पैर और पूरे शरीर के अंगों के लिए देखता है। संत पापा ने कहा कि यह हमारे लिए प्रेम के मर्म को परिभाषित करता है, जो अपने में अद्वितीय मार्ग है। यह मुझे कलीसिया को प्रेम करने हेतु अग्रसर करता है, या उस समुदाय को जिसमें मैं एकता में रहता हूँ, सारे करिश्माओं को, न कि सिर्फ एक मेरे करिश्मा को। यद्यपि वह अपने में छोटा क्यों न लगे, वह सबों के हित, सबकी भलाई हेतु है। प्रेम हमारे करिश्मे को बढ़ाता है, यह किसी एक के करिश्मे को सबों का करिश्मा बनाता है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला खत्म की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Debitoribus
Domino Hoviscum. Sit nomen Domini benedictum. Per nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु गाओ सदा गुणगान।
प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु गाओ सदा गुणगान।
प्रेम
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को आम दर्शन समारोह से पहले तेहरान में अंतरधार्मिक संवाद के लिए बने विभाग और अंतरधार्मिक एवं अंतर सांस्कृतिक संवाद केंद्र के बीच 12वीं संगोष्ठी के सदस्यों से मुलाकात की। संगोष्ठी द्वारा चुने गए शिक्षा के विषयों को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा, शांति के लिए प्रतिबद्धता जिसे हम एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, वह हमें दुनिया की नजरों में और सबसे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वसनीय बनाएगी। संत पापा ने संयुक्त संगोष्ठी द्वारा प्रदर्शित दोनों संस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग के लिए प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि यह संवाद की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने तेहरान इस्फहान के महाधर्माध्यक्ष डोमिनिक योसेफ मैथ्यू को कार्डिनल मंडल में शामिल करने के अपने निर्णय की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि यह निर्णय ईरान में कलीसिया के प्रति उनकी निकटता और चिंता को व्यक्त करता है और बदले में पूरे देश का सम्मान करता है। संत पापा ने संगोष्ठी के लिए चुने गए विषय युवा लोगों की शिक्षा, विशेष रूप से परिवार में क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए एक चुनौती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, परिवार जीवन का पालना शिक्षा का प्राथमिक स्थान है। उन्होंने कहा कि यह परिवार ही है जहां हम अपने पहले कदम रखते हैं और दूसरों से बात करना, उन्हें स्वीकार करना, उनका सम्मान करना, उनकी मदद करना और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहना सीखते हैं। उन्होंने कहा, हमारी विभिन्न धार्मिक परंपराओं का एक सामान्य तत्व युवाओं की शिक्षा में बुजुर्गों द्वारा दिया गया योगदान है। उन्होंने युवाओं के विकास के लिए दादा दादी के अमूल्य गवाही में अपने विश्वास की पुष्टि की। अंत में संत पापा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे हम युवा पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। हमें हर समुदाय और हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों के लिए बोलने और काम करने से कभी नहीं थकना चाहिए। और उन्होंने विवेक और धर्म की स्वतंत्रता को मानव अधिकारों की संपूर्ण इमारत की आधारशिला के रूप में बरकरार रखा और दुनिया भर के हजारों युवाओं के विश्वास के लिए एक मॉडल और संदर्भ बिंदु धन्य कार्लो आकुतिस और धन्य पियर जॉर्जियो फ्रेसाती को अगले साल संत घोषित किया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने आज सुबह 20 नवंबर को आम सभा के अंत में हजारों विश्वासियों से भरे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी घोषणा की। असीसी के तकनीक प्रेमी किशोर धन्य कार्लो आकुतिस 25 से 27 अप्रैल 2025 को किशोरों की जयंती के दौरान संत घोषित होंगे और पियर जॉर्जियो फ्रेसाती को धन्य घोषित होने के 35 वर्ष बाद 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित युवा लोगों की जयंती के दौरान संत घोषित किया जाएगा। आगे संत पापा ने कहा कि 3 फरवरी को वाटिकन में बच्चों के अधिकारों की विश्व बैठक होगी, जिसका शीर्षक है आइए उन्हें प्यार करें और उनकी रक्षा करें। यह विश्व बैठक शोषित, दुर्व्यवहार किए गए और युद्धों के नाटकीय परिणामों को झेलने वाले लाखों नाबालिगों की मदद और सुरक्षा के लिए नई तकनीकों की पहचान करने का अवसर होगा, जिसमें विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और हस्तियों की भागीदारी देखी जाएगी। संत पापा ने यह भी बताया कि आज बच्चों और किशोरों के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस खबर का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। और बच्चों का समूह जो प्रांगण में पहली पंक्तियों पर बैठा था, दौड़ते हुए संत पापा फ्रांसिस से मिलने और आलिंगन करने आगे बढ़े। संत पापा ने उनका स्वागत खुली बाहों से किया और उनके साथ फोटो भी लिया। और बुधवार 20 नवंबर को आयोजित आम दर्शन समारोह यूक्रेन में युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के एक दिन बाद हुआ। आम दर्शन समारोह के अंत में, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी भी मौजूद थीं, संत पापा फ्रांसिस ने इस दुखद घटना पर विचार करने के लिए कुछ समय लिया, जिसे उन्होंने पूरी मानवता के लिए शर्मनाक आपदा कहा। संत पापा ने जोर देकर कहा कि त्रासदी के पैमाने को हमें शहीद यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े होने और शांति के लिए काम करने से नहीं रोकना चाहिए, ताकि हथियारों की जगह बातचीत और लड़ाई की जगह मुलाकात हो सके। संत पापा ने तब उल्लेख किया कि 2 दिन पहले उन्हें यूक्रेन युद्ध की 1000 दिवसीय वर्षगांठ के विषय पर एक यूक्रेनी विश्वविद्यालय के छात्र से एक पत्र मिला। पत्र में युवक ने लिखा था, जब बुधवार को आप मेरे देश को याद करते हैं और इस भयानक युद्ध के 1000वें दिन पूरी दुनिया से बात करने में सक्षम होते हैं, तो मैं आपसे केवल हमारे दुखों के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के बारे में भी बोलने के लिए आग्रह करता हूं। हालांकि यह अपूर्ण है, लेकिन इससे इसका मूल्य कम नहीं होता, क्योंकि इस दर्दनाक स्ट्रोक के साथ पुनर्जीवित मसीह का एक चित्र चित्रित करता है। हाल ही में मेरे जीवन में बहुत सी मौतें हुई हैं। ऐसे शहर में रहना मुश्किल है जहां मिसाइल से दर्जनों नागरिक मारे जाते हैं। मैं भाग जाना चाहता था, अपनी माँ की गोद में एक बच्चे की तरह वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस दर्द के माध्यम से मैं और भी ज्यादा प्यार सीख रहा हूँ। दर्द सिर्फ क्रोध और निराशा का मार्ग नहीं है, अगर यह विश्वास पर आधारित है तो यह प्यार का एक अच्छा शिक्षक है। संत पापा, अगर दर्द आपको पीड़ा देता है तो इसका मतलब है कि आप प्यार करते हैं, और इसलिए जब आप हमारे दर्द के बारे में बात करते हैं, जब आप हमारे 1000 दिनों के दुख को याद करते हैं, तो हमारे 1000 दिनों के प्यार के बारे में भी बातें करें, क्योंकि केवल प्यार, विश्वास और उम्मीद ही हमारे घावों को वास्तविक अर्थ देते हैं। उधर 20 नवंबर को दुनिया भर के कई शहरों में प्रमुख इमारतें लाल रंग से रंगी जाएंगी, जो सताए गए ख्रिस्तियों के लिए जरूरतमंद कलीसिया को सहायता के वार्षिक अभियान रेड बुधवार को चिन्हित करेगी। 18 से 24 नवंबर तक पूरे सप्ताह चलने वाले इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों में करीब 300 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पवित्र मिसा समारोह, वार्ताएं, लाइव स्ट्रीम संगीत कार्यक्रम और संसदीय चर्चाएं शामिल हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।